दीवा और आर्यांश की डिनर डेट हो चुकी थी। दीवा की कोशिशों के बावजूद वो आर्यांश से अपने पापा के बारे में बात नहीं कर पाई। इस वजह से वो काफी हताश हो रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ आर्यांश का भी डेट पर थोड़ा मूड बिगड़ चुका था। उसे दीवा से पता चला था कि उसकी मॉम घर आ चुकी है। आर्यांश गाड़ी में अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि रास्ते में उसकी मॉम का कॉल आया और उसने उसे घर बुला लिया था। आर्यांश अपने मॉम डैड के साथ रहने के बजाय अकेले शांति से रहता था। उसे ज्यादा लोगों से बात करना और घुलना मिलना कम पसंद था। आर्यांश गाड़ी से बाहर निकला और गहरी सांस लेकर खुद से कहा, कमॉन, खुद के गुस्से को काबू रखना है। मॉम कितना भी चिल्ड्रिश बिहेव क्यों ना करें, पर मुझे उनकी हरकतों को झेलना ही होगा। आर्यांश की मॉम समीक्षा कपूर के बर्ताव में थोड़ा बचपना था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो एक मासूम और सीधी साधी औरत थी। गाड़ी पार्क करने के बाद आर्यांश अंदर की तरफ जा रहा था। उसका विला काफी खूबसूरत था। कपूर इंटरनेशनल्स की तरह कपूर मेंशन भी मुंबई में काफी फेमस था। होना ही था, वो इतना खूबसूरत और लग्जूरियस तरीके से बनाया हुआ था कि उसके आगे कोई 7-स्टार होटल भी फीका पड़ जाए। आर्यांश अंदर लिविंग रूम में गया तो उसने देखा कि उसकी मॉम समीक्षा कपूर और डैड मिस्टर मनीष कपूर वहां पर बैठे हुए थे। मनीष समीक्षा के हाथों पर नेल पेंट लगा रहे थे। इसका मतलब साफ था कि मनीष ने कोई गलती की थी, जिसकी सजा के तौर पर उन्हें समीक्षा की अच्छी खासी सेवा करनी थी। आर्यांश को मन ही मन अपने डैड पर दया आने लगी। उसने गहरी सांस ली और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मॉम, डैड। समीक्षा ने जल्दी से ऊपर देखा और उठकर आर्यांश के पास आई। उसने आर्यांश को हल्का सा हक करते हुए कहा, ओह, तो मेरा मम्माज बॉय फाइनली घर आ ही गया। आर्यांश उनसे अलग हुआ और फिर मनीष की तरफ देखकर बोला, वेरी बैड डैड, आपको मॉम को नाराज नहीं करना चाहिए था। हाँ, आपके बेटे को भी पता चल गया कि आपने कोई गलती की होगी, समीक्षा ने मुंह बनाकर कहा और वो आर्यांश की तरफ देखकर हंसते हुए बोली, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी थी, एयरपोर्ट पर लेने तक नहीं आए, तो सजा के तौर पर मैंने इनसे मैनिक्योर करवाया। हालांकि इसमें वो माहिर नहीं है, फिर भी थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। उनकी बात सुनकर आर्यांश ने मनीष की तरफ देखा। वो लाचारी से उसकी तरफ देखते हुए कंधे उचका रहे थे। कौन कह सकता था कि बिजनेस वर्ल्ड में मनीष कपूर की एक स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन के रूप में जो इमेज थी, समीक्षा घर में उसकी ऐसे धज्जियां उड़ा देती थीं। आर्यांश ने बचपन में ही अपने पिता को इस तरह अपनी माँ के आगे पीछे दौड़ते देखा था, इसलिए वो हमेशा ऐसे ही सोचता था कि वो जिस लड़की से शादी करेगा वो उससे अपनी पूरी इज्जत करवाएगा। आर्यांश ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और मनीष से अपना ध्यान हटाया। उसने समीक्षा की तरफ देखकर पूछा, मॉम, कुछ इम्पोर्टेंट था क्या जो आपने मुझे यहाँ तक बुला लिया? अचानक समीक्षा के चेहरे के भाव गहरे हो गए। वो सख्त अंदाज में बोली, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे नाराज हूँ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे मामा की तबीयत इतनी खराब है कि उन्हें सर्जरी तक करवानी पड़ी? तुम्हें मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। आर्यांश ने एक नज़र फिर से मनीष की तरफ देखा। वो भी समीक्षा और सौरभ के इतने क्लोज होने पर खुश नहीं थे। उन्होंने मन ही मन कहा, ऐसा लगता है जैसे मैंने समीक्षा के साथ साथ उसके भाई से भी शादी की है। काश उसे छोड़कर उन लड़कियों से शादी कर लेता जो मेरे आगे पीछे घूमती थीं। लेकिन प्यार अंधा क्यों होता है? मनीष मन ही मन खुद को कोस रहे थे, तभी आर्यांश ने कहा, मॉम, आपको ये क्यों लगता है कि मैं आपको इन्फॉर्म नहीं करना चाहता था? मुझे मामू ने ऐसा नहीं करने दिया। वो नहीं चाहते थे कि आप उन्हें देखकर परेशान हों। आर्यांश ने काफी सफाई से झूठ बोल दिया था। वो जानता था कि सौरभ इस बारे में कभी समीक्षा से बात नहीं करेगा। समीक्षा भी उसके इस झूठ से कन्विंस हो गई थी। समीक्षा ने परेशान स्वर में आगे कहा, फिर तो मुझे उससे भी नाराज होना चाहिए कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम्हारे मामा की तबीयत खराब रहती है, तुम्हें उनका ध्यान रखना चाहिए था। आखिर उन्हें हुआ क्या है? वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा फिट होने में, लेकिन आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। मैं ऐसे में उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं डालना चाहता मॉम, उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे, आर्यांश ने काफी प्यार से कहा। अगर आर्यांश सीधे सीधे समीक्षा से सौरभ को उसकी पोजीशन से हटाने के बारे में बात करता तो समीक्षा हंगामा मचा देती, लेकिन इस बार बात सौरभ की हेल्थ की थी तो समीक्षा तुरंत मान गई। समीक्षा ने उसकी बात पर हामे सिर हिलाया और कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम्हारे मामा को आराम की जरूरत है, तभी मैंने उनके बेटे प्रियांक को बुला लिया है। वो काफी काबिल है और अब से तुम्हारे मामा की जगह कपूर इंटरनेशनल्स के मैनेजर की पोजीशन भी संभालने वाला है। जैसा आपको सही लगे, आर्यांश ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि इस वक्त उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो समीक्षा के सामने जाहिर नहीं कर सकता था। आर्यांश ने गहरी सांस ली और प्रियांक के बारे में सोचने लगा। वो उसके मामा का इकलौता बेटा था जो कि इस वक्त अपनी यूएस में अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रहा था। उसके साथ उसकी माँ कल्याणी भी यूएस में ही रहती थी। समीक्षा के बुलाने पर अब वो दोनों वापस आ रहे थे और ये आर्यांश के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी। आर्यांश को चुप देखकर समीक्षा ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे सहलाते हुए कहा, अच्छा बेटा, प्रियांक तुम्हारा भाई है और उसे बिजनेस में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तुम प्लीज उसकी मदद करना। हाँ, क्यों नहीं मॉम, आखिर हम लोग एक फैमिली हैं।
आर्यांश ने होठों पर मुस्कान लिए अंदर ही अंदर दांत पीसते हुए कहा। उसका बस चलता तो प्रियांक को आने से पहले ही वो ठिकाने लगा देता। आर्यांश के इतना सपोर्टिव होने की वजह से समीक्षा का मूड सही हो गया था। उसने मनीष की तरफ देखकर कहा, मेरे बेबी बॉय ने मेरा मूड ठीक कर दिया, चलिए मैं आपको आपकी इस फ्री सर्विस से आजाद करती हूँ। मनीष ने धीरे से उसे थैंक यू कहा। फिर वो आर्यांश से बोला, आर्यांश तुम मेरे साथ स्टडी रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। इतना कहकर वो जाने लगे। आर्यांश ने समीक्षा के जाने की इजाजत मांगी और फिर मनीष के पीछे चला गया। वो बेवकूफ नहीं था जो नहीं समझ सकता था कि उसके डैड उसे कौन सी बात करने के लिए लेकर जा रहे हैं। उन दोनों की मुसीबत एक ही थी और वो था सौरभ बजाज। वो दोनों घर के फोर्थ फ्लोर पर स्टडी रूम में गए। वहां आते ही आर्यांश और मनीष एक अलग ही इंसान बन गए। आर्यांश ने सिगरेट चलाकर मनीष को दी और फिर अपने लिए भी दूसरी सिगरेट चला ली। वो दोनों सोफे पर बैठे सिगरेट के कश लगा रहे थे। बुरा लग रहा है आपके लिए डैड, आज आपको बहुत सहना पड़ा होगा, मॉम सच में कई बार क्रूअल हो जाती है, आर्यांश ने सिर हिलाकर कहा। अरे तुम्हारी मॉम को तो एक बार के लिए फिर से भी झेल सकता हूँ, लेकिन उस आदमी से न जाने कब पीछा छूटेगा, वो मर क्यों नहीं गया, मनीष ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ इतनी मुश्किल से उसे हार्ट अटैक आया था, सोचा था मर जाएगा पर बच गया, आर्यांश ने सिगरेट का कश लगाते हुए कहा। आर्यांश लगभग उसे मारने ही वाला था, लेकिन उसे बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि दीवा थी। वो दीवा को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता था। अचानक ही आर्यांश का ध्यान सौरभ से दीवा पर चला गया और वो उसके बारे में सोचने लगा। मनीष की आवाज़ सुनकर उसका ध्यान टूटा। मनीष ने गंभीर अंदाज में कहा, बेटा ऐसा नहीं है कि समीक्षा नहीं जानती कि तुम्हारा मामा हमारी कंपनी में क्या झोल कर रहा है, लेकिन तुम्हारे नाना नानी के जाने के बाद उन दोनों का एक दूसरे का कोई नहीं बचा, बस यही सोचकर वो चुप रह जाती हैं। हाँ वो उनका इकलौता भाई है, मॉम को आप सीधा मत समझिए, वो अंदर ही अंदर उनकी हरकतों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। शायद यही वजह है कि प्रियांक हाथ से ना निकल जाए ये सोचकर वो उन्हें कंपनी में लाना चाहती है। कह नहीं सकते मॉम किसका सपोर्ट कर रही है, आर्यांश ने जवाब दिया।
तो क्या करें, एक बार के लिए हमारी प्लानिंग को यहीं पर रोक दें, मनीष ने आर्यांश से पूछा, जिस पर आर्यांश ने हाँ में सिर हिला दिया। यही सही रहेगा, अगर उसे कुछ हो गया तो बाढ़ आ जाएगी मॉम के आंसुओं की, आर्यांश बोला। समीक्षा और मनीष के बीच कितनी भी मीठी नोकझोंक क्यों ना हो, लेकिन वो उससे प्यार भी करते थे, वो उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। उनकी बातों से ये भी साफ था कि सौरभ को रास्ते से हटाने के प्लान में आर्यांश अकेला नहीं था। समीक्षा का सोचकर मनीष के चेहरे पर फिर से बेबसी के भाव आ गए। उन्हें देखकर आर्यांश ने कहा, सॉरी टू से डैड, लेकिन मैं अपनी वाइफ के आगे आपकी तरह कभी नहीं झुकूंगा। मैं उसे प्यार करूंगा, लेकिन ऐसे भी नहीं कि वो अपनी मनमानी करे। आर्यांश को डर था कि वो अपने डैड की तरह जोरू का गुलाम ना बनकर रह जाए। मनीष के चेहरे पर वही बेबस मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, मेरा छोड़ो और अपना बताओ, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम्हें कोई पसंद आ गई है। बोलते हुए अचानक उनके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। उन्होंने आर्यांश के कंधे पर हाथ रखकर धीमी लेकिन दुख भरी आवाज में कहा, अगर ऐसा है तो ये अच्छी बात है कि तुम उससे आगे बढ़ रहे हो। आर्यांश जो अब तक हल्के तरीके से बात कर रहा था, उसके चेहरे पर भी एक अजीब सा दुख छा गया था। उसकी आंखें नम होने लगी थीं और वो अपने आंसुओं को रोकने के लिए जल्दी जल्दी पलकें झपकाने लगा। आर्यांश के उस अधूरे प्यार के बारे में उसके माँ बाप अच्छे से जानते थे और वो यही चाहते थे कि आर्यांश उससे आगे बढ़े। आज पहली बार आर्यांश ने किसी लड़की के बारे में बात की थी, लेकिन फिर से अतीत के जख्म ताज़ा होने पर आर्यांश का दिल दुख में डूब गया। कौन है वो लड़की जिसे आर्यांश प्यार करता है? क्या लगता है कि वो दीवा से किसी तरह से जुड़ी हुई है? एक तो आप लोग पढ़ने के बाद में कमेंट नहीं करते हो, तो प्लीज़ यार कमेंट लिखा करो, यहाँ पर तो ऑटोमेटिक कमेंट्स है, उन पे क्लिक कर दिया करो ना, दो सेकंड भी नहीं लगते हैं, फिर भी आप कंजूसी करते हो।